पद छोड़ देते हैं, कभी और अधिक बोल देते हैं, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर से गाइए तो
यहाँ तक कि समस्त देवता उनके अधीन है, यहाँ तक उनके बेटा भी देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करके उनका नाम इंद्रजीत हो गया। उनकी पत्नियां एक से एक सुंदरी हैं, दुर्गवती हैं। इतना पैसा उनके पास है, कोई था नहीं है। हुआ क्या, जिनका 1 लाख बेटा 16 लाख नाती न बचा, कोई वंशों ने देने दिया नाती। उनके 1 लाख बेटा 16 लाख नाती रहने पर भी आखिर में उनके वंश में दिया बात देने के लिए कहीं नहीं रहा। क्यों, भजन नहीं किया था। अगर भजन करते तो दुर्गति नहीं होती। रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग का सीढ़ी बना लूंगा, अब सब लोग लंका वाले सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। आजकल करते कभी नहीं हुआ। जब सीतादेवी को चुरा के ले आए, कभी सोचा नहीं था कि भगवान राम भी कभी इधर आके पता लगा लेंगे कि सीता देवी कहाँ है। और ये लंका आने के लिए समुद्र पार कैसे करेंगे, ये भी कभी नहीं सोचा था। जब भगवान रामचंद्र समुद्र को पुल बना करके लंका पहुंच गए, उनके पास में कोई किला है नहीं, कुछ भी नहीं है। रावण सोच रहा है क्या लंका पहुंच गया तो क्या युद्ध जीत लिया, लड़ाई जीत ली, इतना आसान नहीं है। एक के बाद एक करके उनके सब बेटे मरते गए। यहाँ तक कि उनके भाई विभीषण उनको बताया था, आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं, आप पराया स्त्री को क्यों चुरा के ले, उनको वापिस कर दीजिए, लंका को आग में झोंकिए मत। तो बात माना ने उनको भगा दिया। और आखिर तक जब मेघनाथ मरने का समय उनका आ गया, आखिर समय आके पिताजी को चेतावनी दे गए, पिताजी ये साधारण नहीं है, ये लोग ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं नारायण है, भगवान है, इनसे सुलह कर लेने अच्छा है। तब भी रावण माना नहीं। जब जिसका मौत का समय आता है, किसका ही तो उपदेश नहीं मानता है। इसलिए हम देखते हैं द्वापर युग में रावण जैसे धनी था, जो धन के अधिपति देवता कुबेर है और उनके अधीन में था। उनके मंदोदरी आदि पत्नियां बहुत सुंदरी, बहुत गुणवती सब थी, और बेटा एक से एक करके बलवान और सद्गुण संपन्न थे। हुआ क्या, सब एक के बाद एक मारे गए। इस जगत में इस धोनी कितना किसी कुछ पैसा हो जाए, सोचते हैं कि हम क्या था क्या हो गया, क्या छीनू क्या हो, मतलब क्या था क्या हो गया। इसलिए अगर कोई भजन करें तभी सुखी हो सकता है। भगवान हमें मनुष्य जन्म दिया किस लिए, देह तो इस बिनहित सने ही, हमारा कोई ऐसे कोई हम कर्म नहीं किया कि मनुष्य जन्म मिले। भगवान कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया। हम भजन नहीं करेंगे तो फिर हमें गाधा सुअर कुकर बनना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में बताया गया, लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। ये क्या हुआ, लब्धा सुदुर्लभम इदम, जगत में जितने प्रकार के हम जनिया देखते हैं उनमें सबसे मनुष्य जन्म कम है। और अर्थतम अनित्तम अपि अधीर, ये केवल मनुष्य शरीर में ही आप भगवान का भजन कर सकते हैं। और ये जन्म चुक गया फिर चुक गया, कब आएगा कोई हिसाब नहीं है। इस जगत में 84 लाख जनिया हैं, ये 84 लाख जन में रह करके भजन करना पड़ेगा। और ये मनुष्य जन्म में क्या हुआ कि भगवान ने साधु संग दिया, और साधु संग में रह करके हम भजन करते हैं, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ जाएंगे, भगवत के धाम में जाएंगे। जद गत्वा न निवर्तन्ति तद धाम परम मम, जहाँ जाने के बाद और लौटना नहीं होता है वही भगवान का धाम है, वहीं जाकर के भगवान नित्य सेवा करेंगे। ब्रज हम लोग को बताते हैं, जैसे कोई भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आया था, बेटा अंधा, तो घूमते घूमते एक हाथ में उनका डंडा है, एक हाथ में दीवार में हाथ लगा करके नगर के अंदर प्रवेश कर गया। घूम रहे वो निकल ही नहीं पा रहे, कहाँ कैसे निकलूं, कहाँ से निकलूं। अब जब निकलने का समय आया, उनकी खुजली मची, खुजाने गए तो दरवाजा पार हो गया। 84 लाख ये प्राचीर था, अर्थात 84 लाख ये विभिन्न प्रकार के जन्म है। केवल मनुष्य जन्म में भजन करके आप उस जन्म से भजन करके भगवान के धाम में जा सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस जगत में जो धनी हो मानी हो, जितने भी गुणवान हो, रूपवान हो, विद्वान हो, आज बंद करेंगे तो जब शरीर जाना राम नाम सुनता है हो जाएगा तो क्या है, आपका सब में कुछ नहीं जाएगा। जब आए थे ना कुछ लेके, न जाएंगे ना कुछ लेके, हाथ पसार से मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसार से जाएगा। जब हम आते हैं मुट्ठी बांध करके जन्म लेता है बच्चा, क्या मुट्ठी बांध के, मतलब कर्म लेके आता है। जब जाता है इस जगत में जो कुछ भी कमाया सबको छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए साथ में कुछ नहीं जाएगा। गुरु जी हमें कहानी सुनाया करते थे कि कभी एक साधु एक राजा के पास गया, बताया मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा ने भेजवा दिया कि हमारे पास समय नहीं है, एक हफ्ता आने के बाद बताओ। एक हफ्ता बाद आया, बोले संत लोग आए हैं, उनको भी 1000 डॉलर दे दो, 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। संत ने बताया राजा से, कहो हे राजन मैं पैसा के लिए नहीं आया, उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा 15 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर आए, उनको 500 स्वर्ण मुद्रा दे दो, 5000। एक महीना बाद फिर आए, बोले 10000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। देखा इससे काम नहीं बनेगा, आई रानी के पास। रानी भक्तिमती थी, बताया माता जी मैं राजा से मिलना चाह रहा था, राजा कोई फुर्सत नहीं है, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, आप ही को बता देता हूँ कि राजा का 15 दिन के अंदर मौत हो जाएगा, वो जो कुछ करना चाहे कर ले, करके वो निकल गए। और रानी तब रोने लगी, अपने नौकरानी को भेजा, राजा आए, संत से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है। जब रानी बुलाया तुरंत आ गए, क्या हुआ, पैसे संत आए थे बता के गया, देखने कैसा है, अरे भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, इसमें तिलक है, कंठी है, तो अपने घर सवार को भेजा, किसी को भी देखो उनको प्रणाम करके आदर के साथ ले आओ। ले आए, अब राजा बैठे नीचे और संत को बैठा है अपने सिंहासन में, बोले हे स्वामी जी आपने इसे बताया, बोले हाँ बेटा मैं जो जानता हूँ ये बताया, तो विश्वास ना हो मुझे बुंदी बना के रख दो और तुम्हारे सबको बता देना, जब तुम्हारा मौत हो जाए 15 दिन के बाद मुझे छोड़ देगा। तो बोले क्या करूँ क्या, बोले अरे तू तो इस देश का राजा है, तू क्या करेगा, तू बहुत अच्छा काम किया तो स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में बहुत सुख मिलेगा, आजकल स्वर्ग में मच्छर है, मच्छरदानी भी है, तुम एक थोड़ा सा धागा आप थोड़ा सुई साथ में ले जाना। बोले महाराज जी कैसे ले जाओ सुई धागा, बोले अरे बेवकूफ कहीं का, इतना बड़ा कर राज्य का राजा है, तेरे साथ एक सुई धागा नहीं ले सकता अपने लिए, तो क्या किया, तो ये तो संभव ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। बोले बेटा तू हरिनाम कर, हरिनाम करेगा तो बेड़ा पार रह जाएगा, तब तेरा मौत भी टल जाएगा और बहुत दिन जिएगा। तब ऐसे ही किया, उनको बताया तुम मेरे साथ जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे हरिनाम दिया, कैसे जप करने विधि बताया, तो ऐसे करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस क्यों ऐसे कहा, बल कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलिजुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम ही सार है, जो कुछ भी करें भक्ति के जो जितने अंग हैं हरिनाम के साथ करेंगे तो सब सुखदायी होगा और मंगल होगा। और हमारे जब मौत का समय आएगा मैं जब भर जाना नहीं पड़ेगा, वैकुंठ के पास जाकर हमें वैकुंठ ले जाएंगे। यदि कोई सुखी होना चाहते हैं तो अपने धन के द्वारा मत देखिएगा, अपने सदगुरु चरण आश्रय करके भजन करें, तभी आपका इस जगत में भी मंगल है, उस पर जगत में मंगल है। हरे कृष्ण पंचाकल गुरुभष्ट कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।
तस्मै श्री गुरुदेव नमः पंचकौतुभ्यश्च पिता सिंधु वेद पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. First of all, I offer my Ananda Dhammadhara Pranam unto the lotus feet of my spiritual master, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrakacharya Ashtapakatara Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. I also offer my Ananda Dhammadhara Pranam unto all the spiritual predecessors in the ascended line coming from Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then I offer my respectful obeisances unto all the guests, mothers, fathers, children, sisters, brothers, and respected Vaishnavas, headed by Vidandi Sannyasi Shripad Prabhupada Maharaj. Welcome to our guests from Houston. Yeah, they have come all the way to attend the program. So Sri Gurudev ordered me to speak about that which we are all very, very interested in, namely happiness. And the challenge is, can we be happy in this world? And if not, then should we do bhajan of Bhagavan and be happy by performing Bhagavan bhajan? In this world, the living entity, it is described in Vedic scriptures, the living entity, he is eternally part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Mani Hamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. He is an eternal part and parcel. Not only that, the Vedic literatures describe that the living entity has a very loving relationship with that Supreme Personality of Godhead. That relationship is full of happiness. But coming into this material world, we are searching, where is happiness, where is happiness, where is happiness? And although we taste a little bit of happiness, all so far in history, everyone has failed to obtain that happiness which is eternal, which is without inebrieties, where there is no any suffering. In this world, although we strive for happiness, we see that most of the time we are making arrangements to avoid distress. When we arrived here on the island, we met one very nice gentleman. And he was very keen and interested to have... very religious personality. And he wanted to have darshan of our Guruji. When we heard about the situation, even though he had everything, healthy body, very nice wife, lovely children, but still he was very unhappy. Then he explained that I wanted that I wanted that my children should be also happy like me. But unfortunately, my son, he was very intelligent. He had all good qualities. But only 5 months ago, he committed suicide. I could not and still cannot understand why this has happened. Why If Bhagavan is kind and merciful, why he allows these things to happen? So you see that even if we are religious, it is very hard to adjust with the situation that we are faced with every day. What is that? Every day we are seeing that people are dying. Those who are near to us, they are dying. People become sick and we are running around to find medicine, go to the hospital to look after those who have become sick. Not only that, so many difficulties are there in our life, even if we have obtained some position, others will come and want to take that position from us. There is one history that in many, many thousands of years ago, there was a very powerful personality. He was interested to conquer the whole world, not only the world, all the planets, power throughout the universe. And he was not interested even to worship Bhagavan. Even though he knew that Bhagavan was there, he knew all the truths of the Vedas. But he was determined to prove that he could become immortal. What happened to him? We all have heard perhaps about Hiranyakasipu. Very, very powerful personality, more than any president, any queen, king, any personality that we know in present world. He was able to get benedictions from Lord Brahmaji that he would become immortal. At least, that is what he thought. He had big, big intelligence. And he did austerities for many, many thousands of years. Finally, he obtained the darshan of Lord Brahma. And he asked Lord Brahma, "My dear son, why you are performing so many austerities? What can I do for you? You are pleasing me. Please, ask any benediction." Then he asked, "I want to become immortal." Lord Brahma said, "I am very sorry. I myself am not immortal. I cannot give that to you." Then, with his intelligence, he thought, "I should make some indirect request that still I can become immortal." So he asked so many benedictions that he could not die in the sky, on the land, in the water, in the house, outside the house, by any weapon, by any man-made weapon, not any animal created in this world. So he thought, "I am more smart than Lord Brahma. Now I am immortal." But lo and behold, his very small son, Prahlad, who was very innocent, but he was a great bhakta of Bhagavan. And he didn't see enemies and friends. He only saw everyone is serving my Lord and Master. His father, he was very, very interested to raise his small son to become exactly like him. Very powerful. At the wink of his eye, all the demigods would start shaking. Everybody would follow his order. So he wanted, not only that, he was expert at sense gratification, sense enjoyment. Drinking liquor, enjoying sense gratification with beautiful ladies. This was his plan how to be happy, and he would not grow old, he would be always young. But still, because he was envious, he could not understand that by praying to God, especially as Maharaji explained, in this age particularly very easy, praying to God, remembering Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. This process we are always obtaining the direct association of Bhagavan and will be happy forever, realizing our eternal identity. He was refusing to do this, but his little son, Prahlad, reminded him time and time again. Not only that, he said, in this world, he said, anyone who wants to be happy, he must perform bhajan. Idolatrous father, my dear father, those personalities who are not interested to take shelter of the lotus feet of Sri Bhagavan. Nate vidur swarna kadim hi vishnu durasmina ye bahir artha manina avdaya tandai rupaviya manas te pisa trantyam dhamni buddha dhamni badaha holy dhamni badaha. He said, my dear father, anyone who has chosen to enjoy this world, he will choose a leader who is similarly interested and refuses to take shelter of the lotus feet of Bhagavan. That person, what will happen to him? Listen very carefully, Father. Anyone who is blind, leading someone who is also blind by the hand, what will be their destiny? The blind man, he will try to move forward, holding the other person. Gradually, gradually, they will fall into the first ditch which is available. And both of them will be finished. Rather, those who have taken shelter in the lotus feet of Bhagavan, they will very quickly receive the true vision, by the causeless mercy of Sri Guru, we will receive our real vision and understand that who we really are. We are eternal part and parcel of Bhagavan. And our relationship with Him is full of happiness. That very happiness we are searching for in this world, which we think we have in this world, it is available in unlimited abundance when we turn inside and look in our heart and see that we are eternally related with the Supreme Personality of Godhead. And by that process, of the guidance of proper Sadguru, practicing Krishna Bhajan, very quickly we will lose our interest in this world and will be happy forever. One small lesson I want to give, then I'll finish my presentation. One time, the spiritual master of our Guru Maharaj, so I will give the mic to the next speaker, who will then ask me to stop. Thank you for your attention.
सूर्य गणेश देवी दुर्गा काली सबकी का भजन करते हैं, सुखी होने के लिए। किंतु गीता भागवत का यह तात्पर्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति देवता देवियों के आराधना से कभी सुखी नहीं है। स्वयं ही इंद्र और जितने देवता हैं गणेश डरते हैं कि कब प्रलय हो जाएगा हम लोग का। वहां पर काम क्रोध लोभ मोह सब है, तो क्या देवता देवियों का भजन करने से हम सुखी हो सकते हैं? इस विषय में अच्युतानंद महाशय 5 मिनट।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं स्मरणीय गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में अपने अनंत कोटि शास्त्रांग मंडल प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर सभी सन्यासी भक्तगण, वैष्णव भक्त इत्यादि सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी ने ये विषय दे दिया है कि यहाँ के लोग मॉरिशस में ज़्यादातर मैंने खुद देखा कि देवी काली माता महादेव ये सब देवी देवताओं का की उपासना होती है यहाँ। और एक नज़र में साई कृष्ण राधा कृष्ण की नज़र होती है और हम सीता की नज़र होती है, लेकिन अधिकांश देवी काली माता ये सब। तो पहले हम समझना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं और जो कुछ हम करेंगे वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो श्रुति स्मृति पुराण की पंचरात्र विधि बिना एकांत की है भक्ति उत्पादायक तो होते। एक श्लोक है हमारे बड़ी वैष्णव शास्त्र में से, कहते हैं कि जो उपासना जो आराधना हम करते हैं अगर वो शास्त्र में नहीं उक्त है तो बस उत्पात होता है इसका। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि यथा क्रोर मूल निशेष लेना तस्कंधो साधना, कि हम सभी लोग तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक कहा गया है कि हम सभी लोग देवी देवताओं को, जो लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे अगर एक अनार का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा, तो उसको पानी देना पड़ेगा। तो अगर आप पत्ते में पानी डालेंगे और उसको उसके स्तन पर पानी डालेंगे तो वो पेड़ मर जाएगा। पानी मुंह पर डालना पड़ेगा, उसके स्तन पर नहीं। तो इस पेड़ में ये उसका सभी स्तन ब्रांचेस ये सब देवी देवताएं हैं, लेकिन उसका मुंह क्या है? जैसे आप लोग शिव का होम करते हैं, देवी की होम करते हैं ये सब, तो ये जैसे अगर आप पानी वो पेड़ के पत्ते में डालेंगे उसका कुछ रिजल्ट नहीं होगा, कुछ फायदा वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर उस वृक्ष के मूल पर पानी डालेंगे तो उस वृक्ष से कितना सुंदर फल मिलेगा। तो मूल क्या है इसे समझना चाहिए। तो मूल है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है एक श्लोक जिसका भागवत का सारांश है एक श्लोक में, एते चामुष कलाह भूस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति। ये सारी देवी देवताएं शिव काली सूर्य ये सब भगवान के अंश हैं, लेकिन मूल भगवान कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो अगर हम लोग किसी की उपासना करेंगे तो मूल उस वृक्ष का मूल हमें जल देना चाहिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण हमें संसार से मुक्त करते हैं। ये सारे देवी देवताएं हमें संसारिक सुख दे देंगे, लेकिन हम इस संसार से मुक्त नहीं रह सकते। तो शास्त्र के ये सिद्धांत तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि महाराज इतने दूर से आए हैं और हम चाहते हैं कि आप तो सभी महाराज के मुखारविंद से कुछ दिव्य कथा सुने, तो यही पर मेरा मतलब विराम दे रहा हूँ। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और माना चाहता हूँ तो दिव्य से अखबार।
आत्मा निकल जाए
वे उससे बातचीत कर सकते। कहां क्रिकेट फुटबॉल हो रहा सब यहां पर बैठ करके देख रहे हैं कौन सा प्लेयर क्या
निकट ही राज्य है वहां पर चले गए।
एक भी किसी से भी एक पुत्र नहीं। यदि इसको पुत्र होगा तो अपने आप ही दूसरा कोई पुत्र नहीं, अपने आप राजा होगा। हाँ, हमको सब तो स्वीकार है और शादी करके दिया है। एक दिन राजा दशरथ को देवता लोग ले गए युद्ध के स्वर्गपुरी में, असुरों के साथ में, दानों के साथ में युद्ध हो रहा। महाराज दशरथ का रथ की धुरी पहिए वाली टूट गई, उसने अपने हाथों पर रथ का चक्का उठा लिया है और अंत में इस प्रकार से महाराज दशरथ घर आने पर महाराज दशरथ ने कहा, यह आज तुम्हारे लिए मैं 50 अरब युद्ध में जाए, इसलिए तुम वर मांगो दो, हमारा प्राण बचाया और साथ साथ युद्ध में विजय दिया। कैकेयी ने कहा, मैं कभी भर चाहता हूं आपसे, समय आने पर मांगू, इधर में क्या होता है। रामचंद्र जी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सबका जनकपुरी में विवाह हो, विवाह होने के बाद में जब अयोध्या में आए तो एक दिन मां रामचंद्र जी कैकेयी के घर में आए। कैकेयी ने बड़ा स्नेह किया, वो भक्त सेवक राम को ही प्यार करती थी, तो रामचंद्र जी ने कहा कि भैया तू हमसे बहुत प्यार कर, तुमसे कुछ मांगना चाहता। क्या मांगना चाहते हो? मेरा वनवास हो और भरत को राज्य मिले, मुझे जंगल में जाना है, असुरों का संहार करना है, धाम की प्रतिष्ठा हो, मेरे मन में ये जाने के बिना क्या काम साध, इसलिए तुम नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, तुमको सदा भक्त से अधिक प्यार किया, तुमको मन में जाने के लिए कहूं मैया, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई देवताओं का यह कार्य नहीं करा सकता, तुम यदि मुझे पन कमल के लिए किसी प्रकार से छल बहाने से कपटता से यदि मन भेज दो, देवताओं का कार्य हो, मैं रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि राक्षस पाली सबको मार करके धर्म की प्रतिष्ठा। तब रामचंद्र जी के बहुत कहने पर कैकेयी ने सुना, इसलिए राम के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर, इसलिए उनका चरित्र बहुत सुंदर, इसलिए बड़ी निष्ठुर होकर के महाराज से मांगा। एक बार में रामचंद्र जी का 14 वर्ष वनवास, दूसरे में भरत की राज्य, इसमें त्याग है, उसमें अपने बेटे को हम राज्य दिलाएंगे, ये स्वार्थ भावना है। उस समय जब ये घटना हुई, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में अपने मामा के पास घर में, जब वहां से लौटे, देखिए अयोध्या पूरा पूरी विधवा के समान हो गई है, कोई लोग उसे बोलते नहीं है, आदर नहीं करते, यह सोच करके पिताजी के घर में, अपनी मैया के घर में देखा विधवा का रूप धारण किया है, अरे भैया आप विधवा कैसे हो गई, तुम्हारे लिए बेटा क्यों? मैंने राजा से वर मांगा, भरत की राजगद्दी हो, राम वन में जाए। राम चले गए, सीता जी और लक्ष्मण साथ गए, इसलिए जब थोड़ी देर नहीं लौटे तो हाराम 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 काम करके अपना प्राण छोड़। जी बड़े दुखी हुए, तुम हमारी रामचंद्र कभी हमारे ऊपर में नहीं बिगड़ते, क्रोधित नहीं होते, पर मैं अज्ञान से मार रहा हूं। इस प्रकार से मंथरा को शत्रुघ्न ने मारा, भरत ने छुड़वा दिया, जो महिलाओं को मारता है। भरत जी कहे मैं राजगद्दी पर नहीं बैठता, समस्त नगरवासी महर्षि वशिष्ठ हमारी मैया कैकेयी और शल्या और सुमित्रा जी चले वन में, रामचंद्र जी को जहाँ पर चित्रकूट में है मना करके हम लाएंगे और उनको राजगद्दी पर बिठाएंगे। दूसरे दिन चल पड़े चित्रकूट, गए चित्रकूट में, कैकेयी ने कौशल्या मैया से कहा ये बहन सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी और मैंने जो दोष किया है राम को वनवास दिया है, मैं कहूंगा राम तुम वनवास से लौट चलो, राजगद्दी पर बैठो, मेरे ही कारण तुमको वनवास हुआ। जब वहां पर पहुंचे चित्रकूट में, भरत वशिष्ठ जी के पास थे, वशिष्ठ से कहा हमारे गुरु पिता तो है नहीं, आप ही हमारे कुल के गुरु हैं, पिता भी हैं, सब कुछ करने वाले, आप यदि कहेंगे राम भैया को वनवास से लौट चलो अयोध्यापुरी राज्य ले, राम जरूर ही राज्य ले, उस आपकी आज्ञा उसको पालन करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा भरत मैं ऐसे कैसे कर सकता, राम धर्म का सेतु है, धर्म का वह पहाड़ है जो प्रशांत महासागर में डूब जाएगा कि अपने धर्म से अचल, तो आप नहीं कहेंगे क्या मैं ठीक नहीं कर रहा, नहीं तो ठीक कर रहे, किंतु मैं कैसे। मैया कौशल्या कह गए भरत और उसे कहा मैया आप राम को आदेश देंगे तो राम जरूर लौट जाएगा और राज्य देगा, बेटा मैं कैसे कहूँ। वही वशिष्ठ जी ने जो कहा तब वो भरत जी सुनैना मैया के पास होंगे, उस समय जनक जी भी वहां पर आए, सुनैना मैया से बहुत कहा कि तुम्हारी लड़की को बहुत कष्ट होगा, इसलिए उनको जनक जी से कह करके उनको अयोध्या ले चला, अच्छा मैं जैसा होगा मैं कहूँ। दूसरे दिन सभा हुई, उस सभा में एक तरफ में राम और सब ऋषि महर्षि बैठे, दूसरी तरफ में भरत मैया अयोध्यापुर निवासी ये सब बैठे, बड़ी विचित्र देवताओं जैसी सभा। जिस समय महाराज जनक वहां पर आए सभा, सब लोग उठ खड़े हुए,
तबाह के डूबने डूबने को है। सौभाग्य महाराज जनक आए, ये विदेह है, शरीर रहते हुए भी शरीर नहीं है ऐसा। तो आज ये हम लोगों को राम और लक्ष्मण, राम और भरत को जैसा आदेश देंगे ऐसा इनको मान लेना है। जनक जी ने राम की तरफ में देखा न कि आप जो कुछ कह देंगे हम उसे मान लेंगे। भरत जी के तरफ में देखा, भरत जी ने कहा कि आप जो कुछ कह देंगे हम मान लेंगे। तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनका ध्यान दिया किया और ध्यान करके बोले जो शंकर जी बुलाएंगे देवदेव महादेव मैं आपको बता। देखिए इन दोनों में राज्य लूंगा कि नहीं लूंगा, भरत की जीत हुई। भरत का प्रेम अगाध प्रेम है, इसलिए उस प्रेम में राम को जो कहेंगे वो करेंगे। राम धर्म की सेतु है। देखो प्रेम में भी एक तरीका होता है, भक्ति जिसको कहते हैं प्रेम, अन्य विलासिता शून्य, ज्ञान कर्म आत्मलाभ, अनुकूलेन कृष्णानुसरण। जब तन मन वचन और भावना की सारी चेष्टा निरंतर गुरु वैष्णव के अनुगत कृष्ण की सेवा में लगे तो ये कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम है। किंतु और शुद्ध हो जाता है जबकि कोई भी सांसारिक कामना वासना हो और कर्म और ज्ञान के द्वारा छाने। बिना कर्म ज्ञान कारण नहीं सकते किंतु कर्म भक्ति के अनुगत। इसलिए भरत की जीत हुई, भरत बड़े प्रसन्न हुए और रानिया अयोध्यापुरवासी सभी बड़े प्रसन्न हुए। जब तो राम को चलना पड़ेगा, किंतु उन्होंने कहा जे देखो प्रेम की भी एक रीति है, वो क्या, जो प्रेम करता है जिसको प्रेम करता है उसको देखे कि ये क्या चाहता है। फिर से समझो, प्रेमी अपना सुख दुख नहीं देखता, प्रेमी कुछ सब कुछ दे देना चाहता है। अब भरत रामचंद्र जी से पूछे कि राम क्या चाहते हैं, रामचंद्र जी के चरणों में झुक और बोले जी अभी तक मैं हमारी आंखें बंद थी। महाराज जनक ने आज हमारे नेत्र
इनका डिफिनेशन है। भगवान क्या चाहते हैं, राम क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं, वही करें। गोपियों ने अपना घर बार लोक लज्जा सब कुछ छोड़कर कृष्ण की आराधना की और कृष्ण उसका ऋण नहीं चुका सके, यह प्रेम की। इसलिए अरथो भगवान श्रोताओं से निवेदन है कि 5:30 बजे